नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य के विकास को गति मिलेगी और लोगों का जीवन बेहतर होगा। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमरीका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक रही है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से जबरन कब्जा कर रखा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% रहने का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत को SU-57 लड़ाकू विमान कार्यक्रम में शामिल करना चाहता है। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।